काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 50, 17, राग आसावरी। एक दिन तैनू सुपना थिसने, गलियां बाबल वलियां वे एक रहाऊ। उड़ी गए भौर फुल्ला दे कोलो, सण पत्तरा सण डालियां एक। जितु तनी लगी सोई तने जाड़े, होर गल्ला करन सुखा लिया दो। रहु वे काजी दिल नहीं उ राजी, गल्ला होइया ता होवड़े वलिया तीन। से राती लेखें पौसनी, जे नाल साहिब दे जालिया चार। नाओ हुसैना ते जात जिलाहा, गालां दे दियां ताणियां वलियां पांच। तैनू अर्थात तुझे, थिसनी अर्थात लगेगी, भौर अर्थात भवरे, कोलो अर्थात पास से, सुखालियां अर्थात आसान, लेखे अर्थात लेखा जोखा, पौसनी अर्थात पड़ेगी, साहिब अर्थात परमात्मा, जालियां अर्थात गुजारना या बिताना। व्याख्या: इस काफी में भी शाह हुसैन मनुष्य को इहलोक से परलोक जाने के मार्ग के लिए दिशा निर्देश देते हुए समझाते हैं कि एक दिन तुझे अर्थात जीवात्मा को यह संसार, जो उसे अपने बाबुल के घर के समान बहुत प्यारा लगता है, इसकी गलियां छोड़कर जाने पर एक सपना बनकर रह जाएगी। अर्थात जीवात्मा ने एक न एक दिन इस संसार को अलविदा कहना ही होता है। रहाओ भवरे जो फूलों के भीतर बंद होकर उनका रस चूसते हैं, फूलों के रसहीन होने पर उसे हमेशा के लिए छोड़कर उड़ जाते हैं। और फूल पत्तों और डालियों के पृष्ठ 51, बावजूद एक दिन मुरझा ही जाता है। एक, जिस मनुष्य को प्रभु से बिछड़ने का एहसास हो जाता है, वही फिर उससे मिलने के लिए तड़पने लगता है। अन्य लोगों को इस वियोग का अनुभव नहीं होता, इसलिए वे दुनिया के अन्य झंझटों में आसानी से खोए रहते हैं। दो, धर्म के पैरवी करने वाले काजी या अन्य धर्मोपदेशकों की बातों से इस दिल को चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रेम के मार्ग ले जाने की बजाय ज्यादा भटका देते हैं। उन्हें वह मार्ग बताना चाहिए जिस पर चलकर परमात्मा से मिलन संभव हो सकता है। तीन, इस मार्ग को वह इस प्रकार बयान करते हैं कि जो रातें मनुष्य अपने प्रीतम की याद में जागकर गुजारता है, वही उसे परमात्मा के निकट ले जाती है। चार, बेशक मेरा नाम हुसैन है और मैं जाति का जिलाहा हूँ। इसका अर्थ है कि मैं परमात्मा को पाने के महान कार्य को नहीं कर सकता। मुझे अन्य लोग इस बात के लिए ताने कसते और कोसते क्यों हैं? क्या छोटी जाति का होने से मैं इस कार्य के लिए अयोग्य साबित होता हूँ? काफी की आखिरी पंक्ति में हुसैन अपनी ओर संकेत करते हुए बताते हैं, परमात्मा के लिए सभी समान है, कोई भी जातिगत बंधन या भेदभाव परमात्मा के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकता। यदि अन्य लोग इसके खिलाफ बोलते हैं तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। 5, 18, राग धनासरी। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 1, रहाओ चरखा चाई सब घर गईया, रही अकेली इकी हूँ। 1, जेहा रेजा ठोकी बुड़ इयो, तेही चादर ताणे सऊ। 2, कहे हुसैन फकीर साई दा आई दा आद लगी होड़ी छकी पौं। 3, नौ अर्थात अनंत, चरखा अर्थात काम करके विदा हो गई, रेजा अर्थात थान या कपड़ा, छकी अर्थात दहेज। व्याख्या: एक दो तीन चार अर्थात अनंत सहेलियां अर्थात अनेक जीवात्माएं यहाँ पर मौजूद थी, रहा हूं एक। परंतु अन्य सभी अपने हिस्से का काम करके या जीवन बिताकर इस संसार से विदा हो गई और मैं अकेली यहाँ पर बैठी रह गई हूँ। एक, यहाँ पर बैठकर जिस प्रकार का कपड़ा मैंने चरखे के द्वारा बुना वैसी ही चादर तानकर मुझे सोना पड़ेगा, अर्थात इस दुनिया में आकर मनुष्य जिस प्रकार के कार्य पृष्ठ 52 करता है वही उसके साथ रहते हैं। दो, हुसैन के अनुसार अपना दहेज मैंने स्वयं तैयार किया है वही मेरे साथ जाएगा, अर्थात मनुष्य के कर्म ही उसका दहेज है जिसे लेकर उसके परलोक जाना होगा। दुनिया में जो वह करेगा वही उसके साथ जाएगा। 3, 19 राग रामकली। एक अर्ज निमाड़िया दी सुड़े जिंदु ने सूरत दा ताणा निरति दा बाड़ा हरी हरी पेटा वुड़े जिंदु नी। एक, रहाओ काहे की ग्यूरे ते ग्यरखी मारे राम भजनु बिनु बाजी हारे बीजिया ही सो लुड़ी जिंदु नी। एक, काहे गर्भही देख जुआनी तेरे जेहिया कैया खान खवानी काले लैया सभी चुड़ी जिंदुनी। 2, कहे हुसैन फकीर गदाई पछछे पूड़ी देही लुटाई शहु नू मिलनी है हुड़ जिंदुनी। 3, अर्ज अर्थात दरख्वास्त या विनती, सुरति अर्थात प्रभु की याद, निरति अर्थात प्रभु में लीन होना, झक अर्थात बकवास, बाजी अर्थात खेल, मानुष अर्थात जन्म का खेल, लुड़ी अर्थात काटना, गर्भ ही अर्थात गर्व या अभिमान करना, खान अर्थात खान खवानी अर्थात खानों के खान या अमीर, काली अर्थात मौत या गदाई अर्थात फकीर, पच्छी अर्थात पूड़ियों वाली टोकरी या छिक्कू। व्याख्या, ए मेरी जान अर्थात जीवात्मा मुझ बेचारे की एक अर्ज अर्थात विनती सुन ले, तू प्रभु की याद का ताणा बनी, उसके नाम में लीन रहकर एक एक पेटा चढ़ा, प्रत्येक काम को करते समय प्रभु के नाम को याद रख, राम का भजन गाते हुए कोई भी बाजी हारी नहीं जाएगी, इसलिए बेकार ही अफसोस करना और परेशान होना छोड़ दे, जो तूने स्वयं बीजा है काटना तो वही पड़ेगा, जो कर्म मनुष्य यहाँ पर करेगा वैसा ही प्राप्ति होगी, अपनी जवानी को देखकर अभिमान करना छोड़ दे, तेरे जैसे अनेकों नेक अमीर लोगों को काल या मौत ने बख्शा नहीं। 2, हुसैन फकीर यही कहता है कि अपनी पूर्ण देह को प्रभु के नाम में लुटा दे, यदि तूने प्रीतम से मिलना है तो स्वयं को मिटा दे। पृष्ठ 53, 20 राग तिलंग। इत्थे रहना ना ही कोई बात चलड़ू दी कर वो। एक, रहाओ वड्डे उच्चे महल उसारियो गोर निमाड़ी घरु वो। एक, रहाओ जिस देही का तू माण करे न जो परछावे ढरु वो। 2, छोड़ तिखाए पकड़ हलीमी पै साहिब थी ढरु वो। 3, कहे हुसैन हयाती लोड़े ता मरन थी अग्गे मर वो। 4, इत्थे अर्थात यहाँ गोर अर्थात कब्र निमाड़ी अर्थात बेचारी ढरु अर्थात ढलना तिखाए अर्थात तेजी या अहंकार, हमीली अर्थात नम्रता, हयाती अर्थात जिंदगी। व्याख्या, यहाँ इस दुनिया में सदा के लिए नहीं रहना, इसलिए अब यहाँ से चलने की बात अब आरंभ कर देनी चाहिए। रहाओ अर्थात जीवन नाशवान है और मौत के बाद यहाँ से चले जाना होता है। एक, यहाँ पर मनुष्य रहने के लिए ऊंचे ऊंचे महल मकान बनाता है जहाँ पर सदैव रहना नहीं होता है, जबकि कब्र में हमेशा के लिए सोना होता है। मौत के बाद उस कब्र की हालत हमेशा खस्ता सी बनी रहती है। एक, रहाओ जिस शरीर पर मनुष्य गर्व करता है, वृद्धावस्था में वह भी ढलना आरंभ हो जाता है, जैसे परछाई भी साथ छोड़ देती है। दो, प्रभु के घर जाने के लिए तेजी तुरशी छोड़कर नम्रता अख्तियार कर लेनी चाहिए और प्रभु के डर को भी याद रखना चाहिए। तीन, फकीर हुसैन के अनुसार यदि जिंदगी चाहते हो तो मरने के लिए सदा तैयार रहो। चार, 21 राग तिलंग, इश्क फकीरा दा कायम दायम, कबहु ना थीवे बेहा, तैनू रब ना भुल्ली, दुआएं फकीरा दी एहा। एक, रहाओ होरना नाल हंस दी खिणदी, शाह तो घूंघट केहा, शहु नाल तू मूल ना बोले बोले, एह गुमान की वेहा। एक, चारे नैन गणावण होए, विच विचोला केहा, उच्छल नदियां तारू होइया, विच बरेता केहा। दो, आप खानी है दूध मलीदा, शाह नो टुक्कर बेहा, कहे हुसैन फकीर साईदा, मर जाना तेज माड़ा केहा। तीन, पृष्ठ 54, दायक अर्थात सदैव रहने वाला अर्थात स्थाई या अमर, घंघट अर्थात घूंघट या पर्दा, किवेहा अर्थात कैसा या गड़ावड़ अर्थात मिल गए, विचोला अर्थात बातचीत करवाने वाला, बरेता अर्थात रेतीला, मलीदा अर्थात साफ या निर्मल। व्याख्या, परमात्मा से फकीरों का इश्क सदैव रहने वाली शय है, वह कभी भी बासी नहीं हो सकता। तुझे अर्थात मनुष्यों को कभी भी परमात्मा का ना भूलना भूल जाए। फकीर तुझे यही दुआ देता है। रहाओ प्रभु से हमेशा इश्क करना ही अमर रहने वाली बात है। कोई फकीर यदि ये दुआ दे कि जीवात्मा को परमात्मा का प्यार ना भूले तो यह दुआ सबसे बड़ी है और यह जरूरी भी है। एक, आम लोगों से मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है और उनके साथ साथ हंसता खेलता है, परंतु परमात्मा के सामने जाने और उसके साथ खुलकर व्यवहार करने में जीवात्मा को शर्म महसूस होती है। प्रभु से बोलना, उससे कुछ न कहने का क्या अर्थ है? मनुष्य किस बात पर गर्व महसूस करता है? एक, जबकि प्रभु से नजरें मिलाकर बातचीत करने या रिश्ता कायम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। जैसे नदियों में तेज बहाव हो तो उसमें रेत संभव नहीं, अर्थात जब मनुष्य का अंतर्मन अपने प्रीतम के यार से भरा हो तो वह नदी के स्वच्छ जल सा निर्मल होता है, उसमें रेत या कोई और मिलावट नहीं होती। दो, स्वयं मनुष्य अपने खाने पीने के लिए एक से एक बढ़िया पकवान और दूध मलाई जैसे पदार्थ खाता है, परंतु प्रभु के सामने वह सदा ही अपना रोना रोता रहता है। जब इस दुनिया से विदा ही होना है और मौत अवश्यंभावी है, तो फिर मनुष्य किस बात पर गरूर करता है? क्यों करता है? 3, 22 राग वड़हंस। इवे गई विहाई कोई दम यादु ना कीता 1, रही वड़ाई तड़ाई कोई गज पाण ना लीता 1, कोरा गई हणाए कोई रंगदार ना लीता 2, भरिया सरू लीलाए कोई बुक झोल ना पीता 3, कहे हुसैन गदाए चलदिया विदा ना कीता 4, इवे अर्थात ऐसे ही विदाई बीत गई। वड़ाई अर्थात बुनना, तड़ाए अर्थात ताना बुनना, कोरा अर्थात एकदम नया बिना रंग के, सरू अर्थात तालाब, लीलाए अर्थात निर्मल, गदाए अर्थात फकीर। व्याख्या, सारी उम्र ऐसे ही यूं ही बीत गई, एक पल भी अर्थात जीवात्मा ने प्रीतम पृष्ठ 55 को याद न किया, अर्थात यह लोक में आकर मनुष्य परमात्मा को एकदम ही भुला देता है। 1, रहाऊ, ताना बुनते समय भी कोई ढंग का काम नहीं किया, किसी भी परलौकिक कार्य को अंजाम नहीं दिया। 1, मनुष्य की आत्मा जिस प्रकार कोरी आई उसी प्रकार ही रही और मनुष्य ने प्रभु के रंग में अपने आप को नहीं रंगा। 2, परमात्मा की रहमत और कृपा दृष्टि चारों ओर से बरस रही थी, परंतु उसकी रहमत के सरोवर या तालाब में से बेपरवाह मनुष्य ने निर्मल जल की एक अंजलि भी भरकर नहीं पी, अर्थात इस सृष्टि में सभी ओर प्रभु की कृपा दृष्टि की बरखा होती है, मगर अक्सर ही लोग इस रहमत को नजरअंदाज करते हैं और इससे कोई फायदा नहीं उठाता। 3, ऐसी जीवात्मा को किसी भी फकीर या महात्मा या आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता और वह एकदम कोरी और अनछुए ढंग से ही कोई भी प्राप्ति हासिल बगैर इस दुनिया से विदा हो जाती है। 4,